أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 156. ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ جنگ احد کے پس منظر میں نازل ہونے والی آیات پڑھی تھی. آج کی آیات جو ہیں میں کہتی ہوں یہ ایسی زندہ جاوید آیات ہیں اور یہ ایسی قرآن پوری ایک زندہ جاوید کتاب ہے اور ہر آیت کو آپ ایک مختلف پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں اور اسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ویسا ہی مکمل پیغام دے گی جیسا اس نے اپنے نزول کے وقت اس امت کو دیا تھا جو ہماری پیرنٹ امت ہے, جس سے سارے مسلمان آگے پھر چلے ہیں اور یہ امت وہاں سے ڈیولپ ہوئی ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونو, نہ تم ہو جاؤ, کاللذین کا جو ہے یہ مشابہت کا کلمہ ہے, یعنی ایسے نہ ہو جاؤ. تو تم نہ ہو جاؤ جیسے الذین, وہ لوگ, کفروا, جو کافر ہیں, وقالوا, اور انہوں نے, وہ کہتے ہیں, لإخوانہم, اپنے بھائیوں کو, یعنی وہ اپنی ٹیمز کو, اپنی فیملیز کو, اپنے بھائیوں کو یہ کہتے ہیں, اذا ضربوا فی الارض, اذا, جب, ضربوا, وہ سفر کریں, فی الارض, زمین میں, او کانوا غزاً, یا وہ جہاد میں ہوں, غزوہ کا لفظ ہے نا, یا وہ جہاد میں ہوں, لو کانوا, لو یہ تمنائی ہے, تو کاش, لو کاش یا اگر, کانو وہ ہوتے, عندنا ہمارے پاس, ما ماتو وہ نہ مرتے, وما قتلو اور نہ وہ مارے جاتے. یہ کلمہ جو ہے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی ہوں اور پوچھتے ہیں ہم اپنے آپ سے, ہم نے کتنی دفعہ ایسا کہا ہے, اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ نہ مارے جاتے, اگر یہ انفیکشن انہیں نہ لگتی تو ایسا نہ ہوتا, اگر یہ اس ہسپتال پہنچ جاتے تو یہ بچ جاتے, اگر لیڈی ڈیانا اس ٹنل میں نہ ہوتی تو وہ بچ جاتی, اگر کتنے ہی ایسے واقعات ہیں, کتنے ہی ایسے موقع ہیں جس پہ ہم صبر کا دامن تو کیا چھوڑتے ہیں اپنے ہاتھ سے, ہم اس دنیا کو اور دنیا والوں کو اور اس وقت کو اور حالات کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی پیارا رخصت ہو گیا یا کوئی کسی شخصیت کو موت آ گئی. تو سب سے خطرناک بات جو اس طرز عمل میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں. ہم یعنی میری ایک دوست ہے, اللہ اسے بہت زندگی دے, وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم موت کے بعد آنے والے حالات سے نہیں ڈرتے لیکن ہم موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو موت جو ہے, اب یہ میں آپ کو نہیں کہتی کہ آپ آج ہی موت سے ڈرنا چھوڑ دیں, لیکن یہ یاد رکھیں اور اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرائیں کہ ہماری موت جو ہے وہ ہماری پیدائش کے وقت لکھ دی گئی ہے. یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اور یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی شادی ہوگی کہ نہیں, اس کے بچے ہوں گے کہ نہیں, یہ کتنی تعلیم حاصل کرے گا, یہ کتنے ملک دیکھے گا, یہ کیسا ہوگا, کچھ نہیں پتہ ہوتا. ہاں, جو پیدا ہوتا ہے, جو زیرو, جو انسان, جو جانور, جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ پکا ہوتا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اس نے مرنا ہے کیونکہ یہ زندہ پیدا ہو چکا ہے. تو وہ چیز, وہ حقیقت جو پیدا ہوتے ہی, بلکہ ماں کے پیٹ میں ہمارے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے, اس حقیقت کے لیے ہم کیا تیاری کرتے ہیں؟ جبکہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا جہیز جمع کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کی فکر, اس کی مونٹیسری کی ویٹنگ لسٹ میں نام لکھوا دیے جاتے ہیں. تو ذرا اپنے طرز عمل پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سب سے بری بات اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جہاد سے رہ جاتے ہیں, ہم اللہ کی راہ میں لڑنے سے رہ جاتے ہیں. نہ صرف یہ, ہم تو کسی کو صحیح بات, سچ بات بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم موت سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو, ऐसे ना हो जाओ काफिरों की तरह जो अपने भाइयों को कहते हैं। और बैकग्राउंड क्या है, ये जंगे ओहद के बैकग्राउंड में नाजिल हुआ है क्योंकि उन लोगों के भाई बंदे मक्का में थे जो मुशरिक थे, और जो जंगे ओहद में शहीद हुए थे वो उनके ख़ानदानों को और उनको आकर कहते थे कि अगर ये हमारे पास होते तो आज ऐसे ना मारे जाते। और ये इस तरह का तर्ज अमल क्यों है, अल्लाह ताला खुद बताता है, लियजअलल्लाहु, ताकि बना दे उसको अल्लाह, जालिक, इस बात को, हसरतन, हसरतें, फी कुलूबिहिम, इनके दिलों में। और हसरत के बारे में याद रखें, हसरात जो है ना, ये इसको इंग्लिश में आप समझें कि ये रिग्रेट है, और रिग्रेट एक ऐसी फीलिंग है जो इंसान को हर अच्छा काम करने से रोकती है। रिग्रेट इंसान को डिप्रेशन का मरीज बना देती है, उसके दिल में हर अच्छी बात पैदा होने की सलाहियत को ख़त्म कर देती है। तो हसरत से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, जो हो गया वो अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, जो होने वाला है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से बेइज़्निल्लाह होने वाला है, और अल्लाह कभी गलती नहीं करता। वल्लाहु युहयी व युमीत, और अल्लाह ज़िंदा करता है और मारता है, वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा तअमलूना बसीर, और जो तुम करते हो उसे देखने वाला है। वलइन कुतिलतुम, और अलबत्ता अगर तुम मारे जाओ, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, और मुत्तुम, या तुम मर जाओ, कुतिलतुम, तुम्हें कोई और मार दे, मुत्तुम, तुम अपनी नेचुरल मौत मर जाओ, लमग़फ़िरतुन, यकीनन बख्शिश है, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत है, खैरुम मिम्मा यजमाउन, बहुत बेहतर है उससे जो तुम जमा करते हो, जो वो जमा करते हैं, यानी जो कुफार मालो दौलत के अंबार और जो शान शौकत वो जमा करते हैं, उससे तो कहीं बेहतर अल्लाह की रहमत और वो बख्शिश है जो उनको मिलने वाली है जो उसकी राह में अपनी जान देते हैं। याद रखें, तालिब इलम की मौत, तलब इलम के दौरान आने वाली मौत जो है ये शहादत का दर्जा रखती है, ये हदीस से साबित है। सारी उम्र तालिब इलम रहें, सारी उम्र तालिब इलम का रवैया अपनाए रखें, और नीयत ये रखें कि या अल्लाह, मैं, तूने कुरान में कहा है अफला तज़क्करून, अफला तदब्बरून, तो मैं सारी उम्र इसके लिए डेडिकेट करता हूँ कि मैंने सीखना है, मैंने तदब्बर करना है, मैंने सोचना है, और मैंने आगे सिखाना है इंशाअल्लाह। वलइन मुत्तुम, और अगर तुम मर गए, और कुतिलतुम, या तुम मार दिए गए, लइलल्लाह, अलबत्ता अल्लाह ही की तरफ, तुहशरून, तुम इकट्ठे किए जाओगे, जब वापस जाने की जगह मालूम है तो फिर वहाँ की तैयारी क्यों ना की जाए। फबिमा रहमतिन, बस रहमत है, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, लिनता लहू, लिनता के नरम दिल हैं, लीन, लयन जो है ये बहुत सॉफ्ट चीज़ को कहते हैं, कि अल्लाह की रहमत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है कि आप नरम दिल हैं उनके लिए। और किसी भी लीडर के लिए ये कहा जा रहा है, जब एक लीडर अपनी टीम से, अपने ग्रोह से, अपनी फौज से मौत जैसी चीज़ मांगता है कि तुमने मेरे साथ जद्दोजहद करनी है और मेहनत करनी है, यहाँ तक कि तुम मारे जाओ या तुम्हें मौत आ जाए, तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं करनी है, तो उस लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी अल्लाह बता रहा है कि वो क्या है, कि उस पे अल्लाह की रहमत होती है कि लिन तलहुम, कि आप नरम दिल हैं उनके लिए। वलौकुन तफज्जन, और अगर आप होते, अगर एक लीडर हो फज्जन, बड़ा तुंदखू, बड़ी सख्त बात करने वाला, बड़ा गुस्से वाला, गलीज़ अल-क़ल्ब, सख्त दिल, तो ये दो चीज़ें याद रखें, फज्जन, तुंदखू, तुंदी दिखाने वाला, जल्दी करने वाला, सख्ती करने वाला, गलीज़ अल-क़ल्ब, सख्त दिल, जिसका दिल ना नरम होता हो। लनफज़ु, अलबत्ता वो मुंतशिर हो जाते, मिन हौलिका, आपके पास से। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे के, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होके अल्लाह ताला गोया पूरी दुनिया के लीडरों को समझा रहा है, और ख़ास तौर पे इस उम्मत के रहनुमाओं को, इस उम्मत के लीडरों को, और सबसे ज़रूरी बात, इस उम्मत के आलमों को अल्लाह ये समझा रहा है कि नरम हो जाओ, तुंदी ना दिखाओ, सख्ती ना दिखाओ, और दिल नरम रखो। जब इंसान का, और दिल नरम करने का किसको नहीं पता, तहज्जुद के लिए उठें, अल्लाह से लौ लगाएं, कुरान सीखें, दिल नरम करने के इससे बेहतर नुस्खे कोई भी नहीं है। इन लोग कहते हैं हम गरीबों को देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और इससे हमारे दिल नरम हो जाएंगे। याद रखें, अल्लाह ताला जो दिल पर हिदायत का नुजूल करने वाली ज़ात है, जब तक उसके साथ लौ नहीं लगेगी, दिल नरम नहीं होगा। और दिल नरम होने की सबसे पहली निशानी क्या है? इंसान इबादत की तरफ मायल हो जाता है, इंसान आखिरत की तैयारी शुरू कर देता है। और जब ये चीज़ें इंसान पर साबित हो जाती हैं, तो वो खुद ब खुद अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा देने वाला बन जाता है। तो कि लीडरों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, तो ये तो अगर आप सख्त होते तो ये आपके पास से मुंतशिर हो जाते। फ़ाफ़ अनहु, बस माफ़ कर दें इनको। उहद के बाद सहाबा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और बहुत रोना धोना और एक रिग्रेट की सिचुएशन थी कि ये क्या गलती कर दी हमने और ये क्या हमने बुरी चीज़ बुरा काम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, इतना बड़ा दुख हमें पहुंचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह भी उड़ गई और हमने उस पर भी यकीन कर लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कहता है फ़ाफ़ अनहुम, बस माफ़ कर दें इनको। वस्तग़फिर लहुम, और बख्शिश मांगें इनके लिए। तो एक लीडर, चाहे वो एक ख़ानदान का लीडर हो, चाहे वो स्कूल का उस्ताद हो, चाहे वो किसी महल्ले में नसीहत करने वाला हो, चाहे वो इमाम हो मस्जिद में हो, चाहे वो सियासी लीडर हो, जिसने कोई मीनिंगफुल काम, कोई बामकसद काम इस दुनिया में करना है, उसने सबसे पहले अपनी टीम को, अपनी जमात को जान देने के लिए तैयार करना है। और जान लोग किस लीडर के लिए देते हैं? जान लोग उस लीडर के लिए देते हैं जो नरम दिल होता है, जो तनखू नहीं होता, जो सख्त दिल नहीं होता, और जो माफ़ करने वाला होता है। तो जो तनखू और सख्त दिल होता है, तो वो उसके पास से मुंतशिर हो जाते हैं। हमारी जमातों को देखें, हमारी पार्टियों को देखें, हमारे महलों को देखें, हमारी छोटी छोटी ख़वातीन की महफिलों को देखें, किस कदर मुंतशिर हैं हम लोग। इस सोशल मीडिया की वजह से और इन बातों की वजह से हमारी गुफ्तगू के टॉपिक्स किस कदर डिस्टर्ब हो गए हैं, और हर किसी का एक अपना नज़रिया है और वो उस नज़रिए के पीछे चल रहा है, और जो उसका नज़रिया नहीं मानता वो उस पर चीखता है और उसे बुरा भला कहता है और उसे डांटता है और गलत अल्फाज का इस्तेमाल करता है। हालांकि उसूल क्या है लीडरशिप के लिए और किसी की रहनुमाई करने के लिए? फ़ाफ़ अनहुम, बस माफ़ कर दें उन्हें। वस्तग़फिर लहुम, और बख्शिश मांगें उनके लिए। और सबसे बढ़ के वशाविर हुम फिल अम्र, और मशवरा करें अपने काम में। बेहतरीन लीडर जो है वो मशवरा करने वाला होता है, और बेहतरीन जमातें वो होती हैं जहां मशवरा देने वाले जमात के साथ मुखलिस होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब आप खलीफा थे तो बहुत ज़्यादा फितने थे, तो आपसे एक मरतबा किसी मुसलमान ने पूछा कि या खलीफतुल मोमिनीन, ये हालात जो हैं, ये आजकल जो हालात हैं, तो ऐसे हज़रत उमर के ज़माने में तो नहीं थे? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उनके मुशीर हम थे और हमारे मुशीर तुम हो। तो याद रखें कि सबसे कीमती असासा एक लीडर का और एक उम्मत का और एक घर का, एक ख़ानदान का, वो मुशीर हैं, वो मशवरा देने वाले हैं जो मुखलिस होते हैं। फ़ाइज़ा अज़मता, बस अगर तूने इरादा कर लिया है, अगर आपने इरादा किया है, फ़तवक्कल अलल्लाह, तो फिर तवक्कल अल्लाह पे करना है, अल्लाह पे तवक्कल करके वो काम करना है। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, युहिब्बुल मुतवक्किलीन, दोस्त रखता है तवक्कुल करने वालों को। इन यंसुरकुमुल्लाह, अगर मदद करे तुम्हारी अल्लाह, अल्लाह फाइल है यहाँ पे, अल्लाह, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, फला गालिबालकुम, तो तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं है। व इन यखजुलकुम, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे, फमन जल्लजी, तो कौन है वो, यंसुरकुम, जो तुम्हारी मदद करे। बड़ी साफ बात है, मदद सिर्फ अल्लाह की मांगनी है। मिन बादिही, अल्लाह के बाद, व अलल्लाह, और अल्लाह ही पर। फलयतवक्किल मुमिनून, चाहिए कि तवक्कुल करें, भरोसा करें ईमान वाले। اب جو آگے آیت آ رہی ہے یہ قرآن کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے کہ جب ایک نصیحت ہوتی ہے تو چونکہ انسانی رویے اور انسانی رد عمل جو ہیں وہ ایک نصیحت کو لے کر جب ہم اس چیز پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم انسان ہیں، ہمارے پاس بہت سی نالج، بہت سا وزڈم، بہت سی حکمت ہمارے پاس نہیں ہے. اب جس لیڈر کی بات ہوئی ہے ہر بات پہ معاف کرنے والا اور اپنی امت کے لیے، اپنے فالوورز کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بخشش مانگنے والا اور ان سے محبت کرنے والا اور ان کے لیے نرم دل رکھنے والا، اب یہ لیڈر جو ہے، جب ایسے لیڈر پیدا ہوتے ہیں تو انسانوں میں ایک فطری کمزوری ہے کہ ہم ان لیڈروں کو ان کی اصل حیثیت سے کہیں زیادہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا تو کہیں زیادہ سمجھتے ہیں یا اگر ہم اس لیڈر کی بات نہیں مانتے، اگر اس لیڈر کا نظریہ ہمارے نظریے سے مختلف ہوتا ہے تو ہم انہیں بالکل صفر میں ضرب دے دیتے ہیں. یعنی انسانی رویہ جو ہے وہ ایکسٹریمز میں ہے، یا تو بہت زیادہ عقیدت، بہت زیادہ ایک لیڈر کو آسمان پہ چڑھا دینا، یہاں تک کہ جو ہم دیکھ چکے ہیں، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ لوگ اپنے پیروں کو اور اپنے مریدوں کو سجدے کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ اٹھا کے اپنے جسم پہ پھیر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں شفا مل گئی ہے، اور وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے روزے رکھتے ہیں، ہمیں روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہم اپنے روزے بخشوا چکے ہیں. یہ موجود رویے ہیں، ہمارے ارد گرد یہ سب ہو رہا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں یا جو ہمارے شیخ ہیں انہوں نے ہماری نمازیں معاف کر دی ہیں. ہم باطن میں، ہم اندر جا کے اپنی تخیل میں، سوچ میں ہم اپنے شیخ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ہماری فرض نماز ادا ہو جاتی ہے. یہ عقیدت کا ایک ایسا لیول ہے جو عام سننے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایک پاگل پن ہے، لیکن یہ پاگل پن نہیں ہے. یہ بالکل نارمل لوگ، نوکریاں کرنے والے لوگ، بزنس کرنے والے لوگ، سیاستدان، سب لوگ، بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں. تو یہ ایک اب نارمل قسم کی عقیدت ہے. یا پھر ایسے لوگ ہیں جن کا نظریہ مختلف ہے، یا جن کا مذہب مختلف ہے، یا جن کی سوچ مختلف ہے، تو وہ اگر آپ ان کے سامنے جا کے اسلام کی بات کریں یا کوئی اسلامی شیخ کا ذکر کریں یا کسی بھی دین کے کسی امام کا ذکر کریں، وہ انہیں گالیاں دیں گے. یعنی وہ ہر قسم کی تمیز، اپنے بچے کو وہ شاید کوئی قیمتی چیز توڑنے پر گالی نہ دیں، لیکن جو نظریہ ان کے نظریے سے نہیں ملتا وہ ان کے حاملین کو، وہ نظریہ رکھنے والوں کو وہ گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے. تو اس قدر یہ خوبصورت بات ہے جو آگے اللہ نے کی ہے کہ اللہ رویوں کے ایکسٹریم سے منع کر رہا ہے. بڑی زبردست آیات ہیں یہ، کبھی ان پہ ڈیٹیل سے بات کرنی چاہیے. وما کان لنبی، اور نہیں تھا نبی کے لیے، اور کانا کا لفظ جو ہے یہ ماضی کے لیے بھی ہے اور حال کے لیے بھی ہے. تو ایسا کسی نبی کے لیے شایان نہیں ہے، یہ اس کی شان نہیں ہے. کسی خبر دینے والے نبی، ایک تو نبی ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لیکن نبی کا لفظ نبا یعنی خبر سے نکلا ہے، تو خبر دینے والا یا رہنمائی کرنے والا، یہ اس کی شان نہیں ہے. اَن يَغُلَّ غَيْن لام لام، یہ کہ وہ کوئی بات چھپائے، اور یعنی کہ حق چھپائے، ٹھیک بات چھپائے. جو بھی لیڈر ہے وہ اس نے پوری بات، پورا پیغام پہنچانا ہے. وَمَن يَغْلُلْ، اور جو چھپائے گا، یَأْتِ بِمَا غَلَّ، وہ لائے گا وہ جو اس نے چھپایا، یوم القیامت، قیامت کے دن. ثُمَّ تَوَفَّى، پھر پورا پائے گا، کُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص، مَا کَسَبَتْ، جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو نبیوں کو، خبر دینے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو پوری بات پہنچانی ہے. صرف یہ کہنا کہ میری عقیدت کرو، مجھ سے محبت کرو، جس اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، جس اللہ نے رہنما بنا کے بھیجا ہے، پہلے اس کی بات کرنی ہے، پہلے اس کا حکم ماننا ہے. بہت گہرا مطلب ہے اس کا اور بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا، لیکن یہاں پر آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے مختصراً بتا دیا ہے. افمن تبع، تو کیا جس نے پیروی کی رضوان اللہ ہی، اللہ کی رضا کی، کمن کا، دیکھیں دوبارہ سے یہ کا آیا ہے، مانند من جو، تو کیا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے، با آ جو لوٹا، بسخت من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ، و वह जहन्नम और उसका ठिकाना जहन्नम है, वो बेसल मसीर और वो बहुत बुरा ठिकाना है। तो जिसने अल्लाह की रजा की पैरवी की, अल्लाह का पैगाम पूरा पहुंचाया, अल्लाह के हुक्म की पैरवी की, क्या वो ऐसा हो सकता है जो अल्लाह के गुस्से के साथ लौटा? यानी उसने जो अमल किया उसने उससे अल्लाह का गुस्सा कमाया। वह वाह जहन्नम और उसका ठिकाना जहन्नम है, वह बेअसल मसीर और वह बहुत बुरा ठिकाना है। हम दरजात, उनके दर्जे हैं इंद अल्लाह, हर अमल के दर्जे हैं अल्लाह के पास, छोटे दर्जे से इब्तदा करें। वल्लाह और अल्लाह बसीर बिमा यअमलून, वो देखने वाला है जो वो अमल करते हैं। लकद मन अल्लाह, तहकीक मन अल्लाह, अल्लाह ने एहसान किया अलल मोमिनीना मोमिनों पर, इस बाअथा जब बेहसत फरमाई, जब भेजा फीहिम इन में रसूलन एक रसूल, मिन अनफुसेहिम उनके दरमियान से उनकी जानों से। सूरह अल बकरा में हज़रत इब्राहिम की दुआ है कि या अल्लाह रब असफीहिम रसूलन, ए अल्लाह उठा इन में एक रसूल जो इनको, यतलु अलैहिम आयातिका जो पढ़े इन पर तेरी आयात, सूरह अल बकरा में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरी दफ़ा ये जिक्र जो है सूरह अल बकरा में ही आया है कि अल्लाह ने एक एहसान फरमाया और दुआ कबूल की और तुम में एक रसूल तुम में उठाया, यानी उम्मत को कहा जा रहा है, मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम में एक रसूल उठाया जो तुम पर हमारी आयात पढ़ता, वयुज़क्कीकुम और वो तुम्हारा तज़किया करता है और वो तुम्हें वो बताता है जो तुम्हें मालूम नहीं है। अब तीसरी दफ़ा वही आयत जो है वो एक और पस मंज़र में, यानी अब उम्मत जो है ये मदीना में आबाद है, जंगे बदर और जंगे उहुद हो चुकी है, बल्कि आजकल अपनी उम्मत को देखें, अल्लाह फरमाता है बहुत बड़ा एहसान किया अल्लाह ने तुम पर मोमिनों पर जब उठाया इनमें, जब भेजा इनमें एक रसूल इनके दरमियान से। तो याद रखें अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम आपको अपने आस पास से कोई देगा, इसको ढूंढने के लिए गारों में और जंगलों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पैगाम आपकी ज़बान बोलने वाला और आपके आसपास से और आपकी जान पहचान वाला जब कोई आपको देता है तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है। तो इनको इनमें रसूल भेजा इनके दरमियान से, यतलू अलैहिम वो पढ़ता है इन पर आयात ही अल्लाह की आयात, वो युज़क्की हिम और वो उन्हें पाक करता है, वो युअल्लिमुहुमुल किताब और वो उन्हें सिखाता है किताब, वल हिक्म और हिकमत, व इन कानू और बेशक वो थे, मिन क़ब्ल इससे पहले, लफीज वलालिम मुबीन अलबत्ता एक खुली गुमराही में। अब ये यतलू अलैहिम आयाति ही व युज़क्कीहिम, ये ऑर्डर जो है ना ये चेंज हुआ है। सूरह अल बकरा में व युज़क्कीकुम व यतलू अलैकुम आयातिना, ये इस तरह आया है कि ये वो तुम्हें पाक करता है और तुम पर हमारी आयात पढ़ाता है। किसको पाक करता है नबी? किसको? उस वक्त वो जो जिक्र हुआ है, नबी किसको पाक कर रहा है? नबी अपनी उम्मत से शिर्क की गंदगी को पाक कर रहा है। अब बात आगे चल चुकी है, उम्मत को तौहीद की समझ आ चुकी है। हमारी जो उम्मत है, अब अपने आप को आप देखें, हमें किसको नहीं पता कि तौहीद क्या चीज़ है और शिर्क क्या चीज़ है। जितनी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं और जितनी डिटेल में हम उसे समझ चुके हैं, उसके बाद कोई इम्कान नहीं है कि हमें शिर्क का ना पता हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तुम पर हमारी आयात पढ़ता है। हमारा भेजा हुआ रसूल जो है वो सबसे पहले तो अल्लाह की आयात उम्मत को सिखाता है, कुरान सिखाता है, और वो युज़क्कीहिम और वो उन्हें पाक करता है, और फिर यतलू तिलावत अलग बताई है, वो युअल्लिमुहुमुल किताब और सिखाता है, पहले वो आयात पढ़ता है, उनके ज़रिए वो उन्हें पाक करता है और फिर वो उन्हें किताब का इलम देता है, वो उन्हें किताब सिखाता है जिसके ज़रिए उनमें हिकमत आती है। एक बड़ा ज़बरदस्त सीक्वेंस है यहाँ पे। वह इन कानू और बेशक वो थे, मिन क़ब्लो इससे पहले, लफीज वलालिम मुबीन एक खुली गुमराही में। अवलम्मा क्या जब, असवाबत कुम तुम्हें पहुँची है, मुसीबत उन कोई मुसीबत, कद असब तुम अलबत्ता तुमने भी पहुँचाई है, मिसलई हा उससे डबल, तुम तो जंगे बदर में 1,000 से लड़े थे और वहां पे तुम 100 से ज्यादा सरदार मार चुके हो, तो तुम जब एक ऐसा काम कर चुके हो तो तुम्हें फिर उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो अल्लाह के बंदे हैं, कोई मुसलमान है, कोई काफिर है, कोई एक वक्त में है, कोई एक और वक्त में है। कुल तुम कहते हो अन्ना हाजा, ये कहाँ से आया? सबसे कॉमन सवाल जो हम अपनी तकदीर से और अपने हालात से करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, वाई मी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि नहीं है? अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, हम सब ये कहते हैं कि नहीं? तो अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, हालांकि तुम वैसे ही मुसीबत उससे पहले तुम भी पहुंचा चुके हो, खूब कत्लो खून तुम कर चुके हो, तुम कहते हो अन्ना हासा, ये कहाँ से आया? कुल, फरमा दीजिए, लीडर को कहा जा रहा है, तुम कहो, हुआ मिन इंदे अनफुसिकुम, ये तुम्हारी अपने पास से, ये तुम्हारी अपनी जानों से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। वमा असवाबकुम, और जो तुम्हें पहुंचा, जो बात, जो तकलीफ तुम्हें पहुंची, यौमल तकल जमाने, और जो तुम्हें पहुंचा, यौमल तकल जमाने,